समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किसी की जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं, इसीलिए दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करें। जब हम इन विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। तो आज का विचार है, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनो, इससे खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार, और आज मेरे साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार। नमस्कार प्रशांत।
Hello Farhat and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. Listeners, we bring for you our forever exciting daily news magazine program Aaj Savere, and in the next 30 minutes we will bring to you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information and relating to personalities pertaining to this date, that is the 2nd of June. So let's begin with the headlines, Farhat.
धन्यवाद प्रशांत। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में कल 62.36% मतदान हुआ। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 57 संसदीय क्षेत्रों पर वोट डाले गए। बिहार में 51.92% मतदान हुआ, वहीं चंडीगढ़ में 67.90%, हिमाचल प्रदेश में 70.05% और झारखंड में 70.66% मतदान दर्ज हुआ। पंजाब में 61.32%, उत्तर प्रदेश में 55.59% और पश्चिम बंगाल में 73.79% मतदान हुआ। उड़ीसा में 70.67% वोट डाले गए, वहीं राज्य में कल विधानसभा की शेष 42 सीटों के लिए भी एक साथ मतदान हुआ। मतगणना मंगलवार को होगी।
Ahead of counting for Lok Sabha elections 2024 on Tuesday, private TV news channels and other agencies have issued figures of exit polls. Most of the exit polls indicate that the BJP-led National Democratic Alliance, NDA, is set to retain power in the Lok Sabha elections. The exit polls suggest the NDA could secure a two-thirds majority in the 543-member Lok Sabha, surpassing the simple majority threshold of 272 seats. Multiple pollsters are predicting a return of the Narendra Modi-led NDA government, winning over 350 seats. The opposition's Indy Alliance will get somewhere between 125 and 150 seats in the Lok Sabha elections. The Lok Sabha elections 2024 have witnessed a direct fight between the BJP-led NDA and the Congress-led Indy Alliance. The ruling BJP is hopeful of a third straight term under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 50 सीटों और सिक्किम में 32 संसदीय विधानसभा चुनाव की मतगणना भी शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा पहले ही 10 सीट निर्विरोध जीत चुकी है। सिक्किम में 6 जिला मुख्यालयों गंगटोक, ग्यालसिंग, मंगन, चांपशी, सोरेन और प्यंगचोंग के 6 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है। सिक्किम की अपर मुख्य चुनाव अधिकारी पेमा हांडेन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य के बाहर से आए 19 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi has said that the opportunistic Indy Alliance failed to strike a chord with voters. He alleged that they are casteist, communal and corrupt. He said this alliance aimed to protect a handful of dynasties, failed to present a futuristic vision for the nation. Mr. Modi said through the campaign, they only enhanced their expertise on one thing, Modi bashing. He said such regressive politics has been rejected by the people.
वहीं निर्वाचन आयोग ने मतगणना तैयारियों की समीक्षा की है। आयोग के अनुसार मतगणना के रुझान और नतीजे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेंगे।
The Election Commission of India, ECI, has provided central forces to prevent any post-poll violence based on assessment provided by the states and central observers. Sources said Andhra Pradesh and West Bengal have been provided with security forces for 15 days after counting days. Similarly, Uttar Pradesh, Odisha, Sikkim, Arunachal Pradesh have been provided security forces till 2 days after counting day. The gross goods and services tax, GST revenue, for the month of May this year stood at 1,73,000 crore rupees. The Ministry of Finance in a statement said that this represents a 10% year-on-year growth. Out of the total collection in the month of May, central goods and services tax is over 32,000 crore rupees, state goods and services tax is over 40,000 crore rupees, integrated goods and services tax is over 87,781 crore rupees, and cess is over 12,000 crore rupees. The ministry added that after accounting for refunds, the net GST revenue for the past month stands at 1,44,000 crore rupees, reflecting a growth of 6.9% compared to the same period of last year. The ministry further informed that the gross GST collections in the financial year 2024-2025 stood at 3,83,000 crore rupees. This represents an impressive 11.3% year-on-year growth, driven by a strong increase in domestic transactions and marginal increase in imports.
असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है. 10 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 3 लोग सहित 11 लोग मारे गए हैं. राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 187 राहत शिविर और 96 राहत वितरण केंद्र खोले हैं. बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं. सबसे अधिक प्रभावित जिलों हैलाकांडी, कछार और करीमगंज से 3 मौतों की पुष्टि हुई है. वहीं तेजपुर, गुवाहाटी और गोलपाड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. कोपेली, धनसिरी, पागला दिया, बुरहिदिहिंग और कोशियाला नदियों का भी जलस्तर कई स्थानों पर काफी बढ़ गया है.
In international news, Qatari, Egyptian and US mediators jointly called upon Israel and Hamas on Saturday to finalize the truce deal outlined by US President Joe Biden. The joint statement said as mediators in the ongoing discussions to secure ceasefire in Gaza and the release of hostages, the three nations jointly call on both Hamas and Israel to finalize the agreement embodying the principles outlined by President Biden. President Biden delivered a speech on Friday in which he revealed a three-phase Israeli proposal that would lead to an end to the ongoing Gaza conflict and the release of all hostages. However, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has insisted there will be no permanent ceasefire in Gaza until Hamas's military and governing capabilities are destroyed and all hostages are released. In a statement on Saturday, Netanyahu's office said Israel's conditions for ending the war have not changed.
और श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचार. तो सबसे पहले प्रशांत, क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में?
Yes. Listeners, from the Chennai Metro News, the combined passing out parade of Agniveer Vayu trainees was held at Air Force Station Thambaram near Chennai. A total of 1,983 Agniveer Vayu trainees, including 234 women of other science streams, successfully passed out from Mechanical Training Institute and Workshop Training Institute. Air Vice Marshal Aman Kapoor reviewed the parade. The parade was followed by various activities that included blindfold stripping and assembling, arms drill, physical training display, drill by Agniveer Vayu team, yoga continuity drill without arms and unarmed combat drill. The reviewing officer congratulated all trainees passing out and felicitated the award winners. He wanted the Agniveer Vayu's veers to keep themselves physically fit, mentally agile, and to uphold the core values of the Indian Air Force. The Madras High Court has sought to overhaul the organ transplant procedure in the state. The court said that the authorization committee should not insist that applications must be received only from hospitals. The court also suggested that the committee collect a lump sum money to the donor for at least 3 years after the surgery. Moving on to Bengaluru, a special court in Bengaluru has ordered Congress leader Rahul Gandhi to appear before it on the 7th of June in a defamation suit for accusing the previous BJP government in Karnataka of 40% Commission Sarkar. The private defamation suit was filed by BJP General Secretary and MLC Keshav Prasad. The complaint was lodged against the advertisement issued by the state Congress in newspapers before the assembly elections in the state, accusing the then BJP government of having corruption rate cards for contracting works. The same was put on social media site X by Rahul Gandhi. The suit accuses the Congress of defaming the BJP by levelling false allegations and thereby misguiding voters. The special court judge, K.N. Shivakumar, hearing the case, has asked Rahul Gandhi to appear before the court without fail. The state chief minister, Siddaramaiya, and deputy chief minister, D.K. Shivakumar, who are accused in the case, were granted bail yesterday. The governor of Karnataka, Thavar Chand Gehlot, administered the oath of office to Justice Valluri Kameshwar Rao yesterday in Bengaluru. Justice Valluri Kameshwar Rao took the oath of office as a justice of the Karnataka High Court. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, Karnataka High Court Chief Justice Nilay Vipin Chandra, Government Chief Secretary Dr. Rajneesh Goyal, High Court Justices and dignitaries were present on the occasion. Moving on to Hyderabad, the people of Telangana are celebrating its formation day today, while the state government has made elaborate arrangements for the day-long celebrations on a grand scale. Chief Minister A. Revanth Reddy will address the people of the state from the parade grounds in Secunderabad after hoisting the national flag and receiving the guard of honour from the armed police forces. The state official song will be released at the programme. Before that, the Chief Minister will pay floral tributes to Telangana martyrs who sacrificed their lives to the cause of Telangana state at the Martyrs' Memorial at Gun Park. A cultural extravaganza and display of fireworks will be held at Hussain Sagar at Tank Bund in the evening. Meanwhile, the main opposition party, the BRS, has taken up a three-day program to mark the occasion. Former Chief Minister and BRS President K. Chandrasekhar Rao paid homage to the martyrs at the Telangana Martyrs Memorial at Gun Park last evening and led a candlelight march till the Amar Jyoti Memorial at Tank Bund. Meanwhile, Governor C.P. Radhakrishnan extended wishes to the people of Telangana on its formation day. He said in a message that it is a heartfelt reminder of the supreme sacrifices made by countless youth in the pursuit of a separate state, and he offered tributes to the martyrs of the Telangana movement for their unwavering dedication. A total of 50 assistant commandants, including 6 women who successfully completed their 57-week-long training and took part in the passing out parade at the National Industrial Security Academy, NISA, the premier training institution of the CISF, yesterday in Hyderabad. And what do we have in news from Delhi, Mumbai and Kolkata, Farhat?
जी प्रशांत, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को होने वाले मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतों की सुचारू और पारदर्शी गणना के लिए मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ ही अन्य सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने राजधानी में पानी की कमी को सरकार की अव्यवस्था बताया है। श्री सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली को हरियाणा और उत्तराखंड दोनों राज्यों से अपने आवंटित कोटे से अधिक पानी मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड अपनी क्षमता से 38.96 एमसीडी पानी शुद्ध कर शहर में आपूर्ति कर रहा है। श्री सचदेवा ने बताया कि समझौते के अनुसार हरियाणा को दिल्ली को 3 प्रमुख स्रोतों से पानी प्रदान किया जा रहा है, जबकि हरियाणा उससे ज्यादा एमजीडी पानी दिल्ली को दे रहा है। वहीं नई दिल्ली के वसंत कुंज में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित समर कैंप में कल बच्चों को म्यूरल आर्ट के बारे में बताया गया। इस आर्ट के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि वे भविष्य में यदि लेखक बनना चाहते हैं तो किस किस तरह के लेखन में हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र की टीम ने बच्चों को फिक्शन और नॉन फिक्शन साहित्य के बारे में जानकारी दी। इस गतिविधि में बच्चों के लिए किताबों की वॉल तैयार की गई, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पुस्तकों के बारे में बताया गया। वहीं विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता बच्चों को एनबीटी इंडिया की ओर से पुस्तकें उपहार स्वरूप दी जा रही हैं। और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का। अर्जेंटिनो और एनएफडीसी फिल्म महोत्सव कल मुंबई में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। छह दिन चले समारोह में सिनेमा की उत्कृष्टता और सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाया गया। इस अनूठे महोत्सव में अर्जेंटीना की तीन और एनएफडीसी की तीन फिल्में प्रदर्शित की गई। ये महोत्सव 27 मई को श्री हानन ओहाको द्वारा एक प्रेरणादायक मास्टर क्लास के साथ शुरू हुआ था, जिसे एनएफडीसी परिसर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के कई आगंतुकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। मुंबई में जापान के महावाणिज्य दूत योगी कोजी ने कहा है कि महाराष्ट्र के चुने हुए विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षु कार्यक्रम TITP के तहत 3 से 5 वर्षों के लिए जापान में रोजगार के दौरान कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विद्यार्थियों का पहला बैच इस महीने जापान रवाना होगा। श्री कोजी ने हाल ही में मुंबई में जापान के महावाणिज्य दूत का प्रभार ग्रहण किया था। और अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। उत्तर दक्षिण 24 परगना जिलों और कोलकाता की 9 सीटों पर कल मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और सुंदरबन जैव विविधता क्षेत्रों और द्वीपों के पास के गांवों में भी कल वोट डाले गए। आखिरी आंकड़ा आने तक 68% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। बारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कल उपचुनाव कराया गया। मतगणना 4 जून को होगी। और महानगरों के मौसम की अब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन इस तापमान में भी बारिश से जो है वो बदलाव आने की उम्मीद है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाये रहेंगे, बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो प्रशांत, ये तो थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के मौसम का हाल।
Yes, listeners, moving down south, Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was recorded at 31 degrees Celsius and the maximum is expected to be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was at 23 degrees Celsius and the maximum expected to be around 34 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy skies with a few spells of rain or thunder showers. And the temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum expected of 38 degrees Celsius.
और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है 2 जून 2024 दिन रविवार। और आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। अगर आज की बात करें तो 1966 में अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा था।
Listeners, in 1924, on the 2nd of June, the American Indian Citizenship Day is observed. It was on this day in 1924 that the Indian Citizenship Act by Congress granted citizenship to all American Indians born in the U.S. On the 2nd of June in 1953, Queen Elizabeth II was formally crowned monarch of the U.K. in a lavish ceremony steeped in tradition that dates back a millennium. 1,000 dignitaries and guests attended the coronation at London, and hundreds of millions listened on the radio and for the first time watched the proceedings on live television.
सन 1979 में पोप का ओहदा संभालने के बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय पहली बार अपनी मातृभूमि पोलैंड लौटे। ये किसी भी सर्वोच्च रोमन कैथोलिक धार्मिक गुरु की पहली पोलैंड यात्रा थी।
In 1966, on the 2nd of June, the U.S. space probe Surveyor 1 landed on the moon and began transmitting detailed photographs of the lunar surface. In 1989, on the 2nd of June, the boys' prep school drama Dead Poets Society, starring Robin Williams, was released in select U.S. theaters. Set in 1959 at a fictional all-male preparatory school called Welton Academy, the film starred Robin Williams as John Keating, a charismatic English teacher who encouraged his students to seize the day and embrace the passion for life expressed by great poets like Walt Whitman. And with Keating's guidance, several students revive an underground campus organization known as the Dead Poets Society. and on the 2nd of June in 1999, Bhutan Broadcasting Service began.
और सन 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, वहीं सन 2004 में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी। तो ये तो थे इतिहास की बात, और अब आइए याद कर लेते हैं उन मशहूर हस्तियों को जिनका आज जन्मदिन है और जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं प्रशांत?
राज कपूर।
जी हाँ, सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं राज कपूर की। हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक रहे राज कपूर। राज कपूर भारत मध्य पूर्व तत्कालीन के काफी और चीन के भी अत्यधिक लोकप्रिय जो है वो एक्टर रहे। राज कपूर का अभिनय विरासत में मिली। इनके पिता पृथ्वीराज अपने समय के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता हुए। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने अपने पृथ्वी थिएटर के जरिए पूरे देश का दौरा किया। राज कपूर भी उनके साथ जाते थे और रंगमंच पर काम करते थे। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा राज कपूर हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम है जो पिछले 8 दशकों से फिल्मी आकाश पर जगमगा रहा है और आने वाले कई दशकों तक इन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा।
Yes, listeners, one of the greatest and most influential actors and filmmakers in the history of Indian cinema, referred to as the greatest showman of Indian cinema and also the Charlie Chaplin of Indian cinema. He was the eldest son of a veteran actor, Prithviraj Kapoor, and he starred in and produced many films for which he received multiple accolades, including 3 National Film Awards and 11 Filmfare Awards in India. He was inspired by Charlie Chaplin and played characters based on Chaplin's film The Tramp. In his own films such as Awara of 1951 and Shri Charsabees of 1955. In fact, his performance in Awara was ranked as one of the top 10 greatest performances of all time in world cinema by Time magazine in 2005, and both that and his other produced films, Awara of 1951, Boot Polish of 1954, competed for the Palme d'Or Prize at the Cannes Film Festival in 1951 and 1955 editions. He was honored with the Padma Bhushan in 1971 and with the Dada Saheb Phalke Award in 1987. Let's listen in.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निचार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे।
राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की रहीं। राज कपूर की फिल्मों की पहचान उनकी आंखों का भोलापन था। इसके अलावा उनकी काफी फिल्में नारद और अमर प्रेम, वाल्मीकि काफी लोकप्रिय रहीं। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग के साथ पूरा हुआ। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने खुद किया था। इसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चैम्बूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने आरके स्टूडियो की स्थापना की। और श्रोताओं, अब हम बात करते हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, गायक और वाद्य यंत्र वादक इल्लई राजा की, जिनका आज जन्मदिन है। इन्होंने मुख्यतः दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों में संगीत दिया। 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इल्लई राजा ने सागर संगम, सिंधु भैरवी और रुद्र वेना फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जीता। उन्होंने मलयालम फिल्म पचासवीं राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्हें फिल्म विश्व थलासी के लिए वर्ल्ड फेस ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म संगीतकार एमएस विश्वनाथन के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर के लिए गोल्ड रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
Yes, and today is the birthday of film director, producer and screenwriter Mani Ratnam, the track of which we were just listening to. Born in 1956 on the 2nd of June, he's one of India's most acclaimed and commercially successful filmmakers. He predominantly works in Tamil cinema but has also made films in Hindi, Telugu, Malayalam and Kannada. Mani Ratnam has won 6 National Film Awards and 4 Filmfare Awards, 6 Filmfare Awards South and numerous awards at various film festivals across the world. In 2002, the Government of India honoured him with the Padma Shri, acknowledging his contributions to film.
बिल्कुल, और फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनुपल्लवी थी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर और लक्ष्मी ने काम किया। इसके बाद मणिरत्नम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दक्षिण की तमाम भाषाओं में फिल्में बनाई, लेकिन मणिरत्नम को लोकप्रियता मिली मौना रागम से।
Listeners, despite being born in a film factory, in a film family, Mani Ratnam did not have any professional interest in films. In fact, upon completion of his post-graduation in management, he worked as a consultant and he started his film career only at the age of 27 with the Kannada film of 1983, Pallavi Anupallavi. However, his work came into widespread prominence with the 1986 Tamil film Mounaragam, which won him his first Filmfare Best Director Award and established him as a leading filmmaker in Tamil cinema. He went on to direct several critically acclaimed films like Nayakan of 1987, Anjali of 1990, both of which qualified as India's official entry for the Academy Awards. His romantic terrorism drama Roja of 1992, Bombay of 1995 and Dil Se of 1998 made him famous across Bollywood.
और प्रशांत, नायकन मणिरत्नम की एक ऐसी फिल्म थी जिसे विदेशों में भी काफी सराहा गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2005 में पहली बार सर्वकालिक 100 महान फिल्मों की सूची जारी की थी। इसमें मणिरत्नम की नायकन, सत्यजीत राय की द अपूर ट्रायलॉजी और गुरुदत्त की प्यासा को जगह मिली थी।
Today is the birthday of archer and sportswoman Dola Banerjee. Born in 1980, her first international appearance was in the Youth World Championship in San Diego in 1996 at the age of 16, and since then she has been a regular member of the Indian women's archery team. She was placed 13th in the women's individual ranking round with a 72-arrow score of 642. She has represented the country at more than 50 competitions, including 2 Olympic Games of 2004 and 2008, 3 Asian Games, 4 World Championships, 4 Asian Championships, 11 World Cups, 3 European Grand Prix, 10 Asian Grand Prix, 2 SAF Games, and she has won more than 16 gold medals, 3 silver and 8 bronze medals. She was awarded the Archana Award in 2005. And listeners, today is the birthday of Australian former international cricketer Steve Waugh. Born in 1965, he is considered one of the greatest cricketers of all time. He was a right-handed batsman and a medium-pace bowler. He is considered the most successful test captain in history, with 41 victories and a winning ratio of 72%. part of the Australian team that won their first world title during the 1987 Cricket World Cup. He went on to captain Australia from 1997 to 2004. He led Australia to 15 of their record 16 consecutive test wins and to victory in the 1999 Cricket World Cup. Listeners, the only significant result that Australia failed to achieve during Waugh's international career was a victory in a test series in India. Waugh was calling this the final frontier, as Australia had not won there since 1969 and India won the Border Gavaskar Trophy in 2001. While Steve Waugh was captain of the Australian side.
और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को आज नहीं सुन पाए हैं किसी वजह से और दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर.
Listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat and then the morning news. Thank you for tuning in. Have a great day.
Namaskar. Namaskar.